नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अरुण कुमार। मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमेरिका ने कहा होर्मुस जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमेरिकी नौसेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। यूरोपीय संघ और 14 अन्य देशों ने दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों को अमान्य घोषित करने वाले 2016 के फैसले की पुष्टि की। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण पदक सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़वेरेव का मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत ने ओमान तट के पास भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जा रहे वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव को तत्काल कम करने की अपील दोहराई है। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है। भारत ने स्थायी समाधान के लिए जारी कूटनीतिक वार्ता को शीघ्र ही सफल निष्कर्ष तक पहुंचाने का आह्वान किया है, जिससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल की जा सके।
भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा कि होर्मुस जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया कि होर्मुस जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उसने कहा कि ईरान का होर्मुस जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा होर्मुस जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। कमान के अनुसार हमलों में मिसाइल, ड्रोन और संचार सुविधाओं सहित लगभग 140 ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। कतर और कुवैत ने कहा कि उन्होंने आने वाली मिसाइलों को रोक लिया, जबकि बहरीन ने मिसाइल अलर्ट जारी कर दिया। इस ताजा तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि होर्मुस जलडमरू मध्य दुनिया के तेल और प्राकृतिक गैस व्यापार के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग है। विदेश मंत्रालय ने 2017 में जारी उस अधिसूचना को वापस ले लिया है, जिसमें यमन की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर कुछ शर्तें लगाई गई थीं। ये अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और सशस्त्र संघर्ष के कारण बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए जारी की गई थी, जिसके चलते भारत ने अपने नागरिकों की यमन यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। परंतु एक परामर्श में विदेश मंत्रालय ने कहा कि वे सभी भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह देता है। मंत्रालय ने कहा कि यदि यात्रा बेहद जरूरी है तो इसे स्थानीय सुरक्षा स्थिति का पूरी तरह से आकलन करने के बाद ही किया जाना चाहिए और उन क्षेत्रों की यात्रा से बचना चाहिए जहां संघर्ष सक्रिय हो। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन्ह हंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका, ब्रिटेन और बारह अन्य पश्चिमी तथा दक्षिण एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयां अस्वीकार्य हैं। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करना है। भारत ने चीन के ऑर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सेनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुओ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना म्लाडेनोविक की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफेनी को 6-3, 7-5 से हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमेरिका ने कहा हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमेरिकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। यूरोपीय संघ और 14 अन्य देशों ने दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों को अमान्य घोषित करने वाले 2016 के फैसले की पुष्टि की। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण पदक सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सेनर और अलेक्जेंडर ज़्वेरेव का मैच जारी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।